نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رهبر كامل كتاب میں سے آج جو باب ہمارے سامنے ہے اس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زاہد کی حیثیت میں. باب نمبر 8 ہے یہ. زاہد کون ہوتا ہے؟ زہد سے زاہدال. زہد کہتے ہیں دنیا کی چیزوں سے بے تعلقی. تقوی اور زہد یعنی دل کے اندر خواہش نہ ہونا دنیا کی چیزوں کی. تو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی صورت میں کہ آپ اس دنیا کی طرف کتنے جھکے ہوئے تھے اور کیا آپ کا معاملہ تھا. انشاءاللہ اس سے ملے گا تو آپ کو زہد کی صحیح چیز بھی یہیں سے ملے گی کہ اصل زہد کیا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل اسلام کی ابتدائی زندگی نہایت تنگی اور ترشی میں گزری، یعنی بہت غربت میں گزری. مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ تنگی جلد ہی دولت اور فراخی میں تبدیل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں صحابہ کرام کی حالت کچھ سے کچھ ہو گئی، اور وہ جو بھوکے اور مفلس تھے یعنی نیڈی تھے، لکھ پتی بلکہ کروڑ پتی ہو گئے، ملینیرین ہو گئے. جو بالکل بیارو مددگار تھے، صاحب جائیداد ہو گئے. جو ایک فٹ زمین نہیں رکھتے تھے، وہ بڑے بڑے باغات اور زمین کے ٹکڑوں کے مالک ہو گئے. جن کے سامنے بھوک ناچتی تھی، وہ بڑے بزنس مین اور تاجر ہو گئے. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں صحابہ کرام دولت مندی صحابہ کرام دولت مند اور بڑی جائیداد کے مالک بن گئے. اس پہ ایک بک بھی انہوں نے لکھی ہے، دولت مند صحابہ کے نام پہ. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ پڑھا دیتے ہیں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام کیسے مال و دولت کو کماتے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ہیلپ فل ہو سکتی ہے آج کے دور میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چاہتے تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے مالک ہو سکتے تھے اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. اور طاقت اور قدرت کے باوجود اگر ایسا نمونہ پیش کیا جو آج تک کوئی پیش نہ کر سکا. تو یہ تھی تمہید اس باب کی. تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی اس کے بارے میں کہ عموماً ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے ذہنوں میں، اور کچھ ہم نے پیش بھی اسلام کو اسی طرح سے کیا، اور وہ کیا ہے کہ اسلام پہ آتے ہی انسان غریب ہو جاتا ہے. سچ بتائیے، کیا یہ تصور ابھرتا ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کے بارے میں پوچھیں کہ وہ دین کی طرف آ گیا یا وہ دین کی طرف اس کا رجحان آ گیا، پہلا تصور ہمارے ذہنوں میں کیا ابھرتا ہے؟ غریب ہو جائے گا. ماں کو پتا چلے بیٹا اب دیندار ہو گیا تو کیا کہے گی؟ اب یہ کیا ہوگا، یہ اب کام پہ نہیں جائے گا، کمائے گا نہیں. بیوی کو لگے تو وہ سوچتی ہے کہ اب یہ تو ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. جی اگر کنواری، بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ اگر لڑکا جو ہے وہ اگر ایسا ہو جائے تو ماں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کو لڑکی کون دے گا، یہ تو دین پہ چلا گیا، اب یہ تو مولوی بن گیا. کیا یہ سچ ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو چیز دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دنیا میں ہی واپس کر دیتا ہے. ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو کیا ہم اس کی رکھ لیتے ہیں؟ لیتے ہی کیا فکر لگتی ہے کہ اب اس کو دینی ہے، اور کوشش کر کے انسان اس سے بڑھا کے دیتا ہے. اسی لیے کچھ دیہاتوں میں جب کوئی 100 دیتا ہے تو اگلا اس پہ 101 کر کے دیتا ہے، 50 کے اوپر ایک بڑھا کے 51 دیتا ہے کہ کچھ تو زیادہ دیا. شکر ہے سینٹس میں کام نہیں کرتے کہ 50 سینٹس زیادہ کر دیں، لیکن بہرحال انسان جتنا بھی چھوٹی سوچ رکھتا ہے ویسے کام کرتا ہے. تو آپ بتائیے کہ دنیا میں تو کوئی انسان کسی کی ایک چیز کو لے کے دو دینے کے شوق میں ہو تو کیا اللہ رکھ لے گا؟ लिखें अपने पास, इसमें से एक बहुत प्यारी अमल की बात निकलती है कि अल्लाह की तरफ आने से अगर कुछ जाता है, वक्ती तौर पर ऐसा हो सकता है, कोई शक नहीं इसमें, अल्लाह का हुक्म माना, नाफरमानी की चीज़ छोड़ी, हो सकता है, लेकिन दुनिया में ही पलट के आता है। अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा देने वाला है, वो तो लेके वापिस कर देता है। तो लिहाजा वो सहाबे कराम जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में चीजें दी, और अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने घर दिया, जरा सोचिए दुनिया में मिल गया हो गया तो क्या ना बात हुई। ये तो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं ना कि अबू बकर सिद्दीक ने पूरे घर का सामान दे दिया, लेकिन ये बहुत कम जानते हैं कि फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी बाद की उम्र में बहुत दौलत भी मिल गई थी। जी बिल्कुल, और कई सहाबे कराम के बारे में आता है कि वो जब फौत हुए तो उनका इतना माल था, जिसमें यह इन्होंने अब्दुलरहमान बिन औफ का नाम भी दिया, कि उनकी यानी जायदाद जब बटी और उसमें उन्होंने नबी सल्लम की बीवियों का हिस्सा भी रखा था, अपनी वसीयत में डाला कि मुझे इनको भी देना है, और इतना माल था कि सोने के टुकड़े जो थे उसको काट काट के कुल हारों से लोगों में बांटे गए थे, इतना माल था। तो मत सोचिए कि हमारा इस्लाम गरीब है, अल्लाह वाले इस्लाम वाले सबसे अमीर होते हैं, दिल तो पहले ही गनी होते हैं, अल्लाह ताला जाहिर में भी कर देता है। ये अलग बात है कि उनकी पंप एंड शो ना हो, ग्लैमर ना, उनका उनका माल, अब ये नहीं कि फिर वो उन्हीं के घरों की डेकोरेशन में सजने लगे और उनके माथों पे सजने लगे, उनको जितना मिलता था उनके दरवाजे उतने खुल जाते थे अल्लाह के लिए। और यही है सच सही दीन का कॉन्सेप्ट, इस्लाम इससे मना नहीं करता कि माल कमाया जाए, इस्लाम सुस्ती को ना पसंद करता है, कसलबंदी को ना पसंद करता है, कोई सारा दिन लेटा ही रहे क्या करना है माल कमा के, जब पसंदीदा नहीं, नहीं खूब कमाओ और खूब खर्च करो, कहाँ, अल्लाह के रास्ते में, जमा करो अपनी जरूरियात के लिए, लेकिन जहाँ कहीं जरूरत आ जाए अल्लाह के रास्ते की, खोल दो अपने दरवाजे। इंशाल्लाह इस पे कभी पूरी बात करेंगे कि इस्लाम में माल का नजरिया क्या है, और तफसीर की क्लास में ऐसे आयतें आती रहती हैं तो वहाँ देखेंगे, यहाँ अभी इसी टॉपिक पे रहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम का दिल कितना गनी था, कि इन सारी चीज़ों के बावजूद जो लोगों के साथ थी आपने खुद अपने लिए क्या पसंद किया। और इसी वजह से आपको पता है कि एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने इस चीज़ का मुतालबा कर दिया था कि अल्लाह के नबी, पहले तो बात और थी, चले गुर्बत थी हमें भी दिख रहा था, लेकिन अब खैबर फतह हो गया, अब हर घर में माल आ गया, इतना कुछ हमारे लिए भी ज्यादा कर दे, यानी उन्होंने ऐसे लग रहा है कि थोड़ा जरूरत से जायद मांग लिया था, कोई आसूदा जिंदगी मांगी थी, तो नबी सल्लम ने इस पे उनसे इला कर लिया था कि तुम्हें दुनिया का माल चाहिए, आओ फिर आयते तखय्युर नाजिल हो गई, इख्तियार दे दिया गया, चूज कर लो, अल्लाह के नबी को चूज करना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, हाँ अगर माल और दौलत चाहिए आओ मैं तुम्हें बहुत माल दे के रुख्सत कर देता हूँ, लेकिन तुम फिर मेरी ज़ौजियत में नहीं रहोगी, और मशवरा कर लो दूसरों से, माँ बाप से पूछ लो जिससे करना है, लेकिन सबसे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको चूज़ कर लिया, क्या आपके बारे में मैं किसी से मशवरा करूँगी, क्यों, कि ये कितना प्यारा साथी, ऐसा शख्स जो अल्लाह का नबी भी हो और इतने आला अखलाक वाला हो, उसको छोड़ के तो सारी दुनिया की दौलत मिल जाए तो वो कबूल नहीं। तो लिहाजा ये चीज़ जहन में रखने की है कि दौलत मिल जाती है, आ जाती है, उसमें हरज नहीं, लेकिन ईमान वाले के दिल में दौलत नहीं होती। अब कुछ वाकयात देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। आपका जोहद और वरा, ये वरा लफ्ज़ बिल्कुल जोहद ही के मानों में आता है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा यानी बेरगबती पाई जाए दुनिया की चीज़ों से, शोहरत से और दिखावे से, बड़ा बन के रहने से इंसान इज्तनाब करे। आपके जोहद और किनात और तकवा का ये आलम था कि घर में फराखी हो या तंग दस्ती, कैफियत यकसा ही रहती थी, और आपके जोहद में किसी हालत में भी फर्क ना आता था, यानी ज्यादा दौलत के दिन हो या कम दौलत के हो, आपकी हालत एक ही थी। हमारा क्या होता है, पहले कहते थे लोग चार पैसे आते हैं तो घर की हालत बदल जाती है, मैं कहती हूँ आज इस मुहावरे को बदलने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की जरूरत है, पैसे ना भी आए तो घर की हालत बदल जाती है, क्रेडिट कार्ड, जिंदाबाद तो नहीं कहूंगी मैं। चलिए हदीस शरीफ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, या रब्बी, ए मेरे रब, अजू यौमन, मैं भूखा रखूं एक दिन, व अशबाऊ यौमन, और पेट भर के खाऊं एक दिन, यानी एक दिन मेरे पास भूख रहो, गुर्बत हो, और एक दिन बाद मुझे खाना मिले। फअमल्लसी अजू उफी, और वो दिन जिसमें मैं भूखा रहूं, फअतदर्रउ इलैक, तो मैं गिड़गड़ाया करूं, आजजी करूं, हम्बल बन के रहूं तेरे सामने, व अदउक, और तुझसे मांगू, यानी जिस दिन ना मिले उस दिन आजजी आ जाए और फिर मैं तुझसे मांगू। फअमल्लसी अशबाउफी, और वो दिन जिसमें मैं पेट भर के खाऊं, फअहमदुका व उसनी अलैक, तेरी हमदो सना किया करूं। आपने मांगी कभी ये दुआ? हमारी दुआओं में ये दुआ है? ये दुआ किसी को कहें याद करो तो लोग डरने लगेंगे। अब देखिए कि दो कैफियत होती हैं जिसमें बंदा रब का कुर्ब पाता है, एक सब्र की और एक शुक्र की। किसी नेमत के मिलने पे बेसाख्ता अल्लाह की तारीफ निकलती है तो अल्लाह का कुर्ब मिलता है, और किसी चीज़ के छिनने पे बेसाख्ता इन्ना लिल्लाह निकलता है, सब्र करता है इंसान तो अल्लाह का कुर्ब पाता है। जब ये दोनों कैफियत ना हो और इंसान एक गफलत की जिंदगी में हो तो वो उसके तमाम ताल्लुकात को अल्लाह ताला से काट देती है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये दुआ याद करें और मांगना शुरू कर दें, कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? हम तो सोचेंगे इसका तो ये मतलब है एक दिन मियाँ को अच्छी जॉब मिल जाए, दूसरे दिन ना मिले। हमारा हाल क्या होता है, एक दिन कस्टमर ना आए, चेहरे लटके हुए उतरते हैं ना, आज तो सारा दिन कोई सेल ही नहीं हुई। नहीं सोचते कि आज क्यों नहीं हुई? जरा सोचो तो सही कि थोड़ा वक्त अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दे दिया, मेरे काम में ले हो। अमूमन देखिए कि जब मर्दों की जॉब नहीं होती, ले ऑफ होते हैं, मर्दों को मैंने नहीं परेशान होते देखा, चेहरा उतरता है तो औरतों का उतरता है, मियाँ की जॉब नहीं रही तो क्या हुआ? अल्लाह मियाँ को सलामत रखे, और मिल जाएगी, फिर क्या हुआ? ये इसलिए गई है कि इससे अच्छी मिले। सोच करो, बदलने की जरूरत है ना। अब मैं चाह रही थी कि इस पे हम एक एक्टिविटी करें। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, और हमारे घरों में तो मेरा ख्याल है कि 2-3 वीक से ज्यादा का सामान होता है ना। आप ये बताइए कि घर के अंदर, यानी जब जो सामान हमारे होता है, अगर हम बिल्कुल कोई चीज ना खरीदें तो कितने दिन तक हम गुजारा कर सकते हैं, यानी जिसमें घर से ही चीजें निकाल निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सलवा, 1 महीना, ये कह रही है कि अगर मैं 1 महीना कुछ ना लाऊं तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट्स करके गुजारा हो जाएगा, और गुजारा मेरे लिए उसको कह रही है कि आराम से, यानी जिसमें हर चीज चलती रहेगी, वरना सिर्फ जिंदा रहना फिर तो शायद सालों का सामान होगा। जी आप अपने घर के बारे में आप क्या सोचती हैं? ऑनलाइन वाले भी लिख सकते हैं। हाँ, 1 महीना रफत, ये कहती हैं कि 3 वीक तक अगर मैं कुछ ना खरीदूं तो मेरा गुजारा हो सकता है। जी अमरीन, 1 महीने का। शेरियां बताइए, 2 माह का होगा। जी आप क्या कहेंगे, यानी अगर आप कुछ ना लें, ग्रोसरीज वगैरह कुछ, तो फिर कितने दिन गुजारा हो सकता है?